महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः प्रणमो अरिहंताणं, प्रणमो सिद्धाणं, प्रणमो आयरियाणं, प्रणमो वज्रायाणं, प्रणमो लोए सर्वसाहूणं, भूतबली प्रणीतं तं बंधतत्व प्रकाशकं, महाधवल विख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नामक का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 39 पर हम आगे 39। यहाँ हमारा जघन्य अनुभाग बंध के काल की प्ररूपना चल रही है। एक जीव की अपेक्षा लगातार जघन्य अनुभाग बंध कितने काल तक होगा, तो हमको उस स्वामित्व को याद रखते हुए उसको सोचना है। कुछ हमको तो जिसको कहेंगे कि घोकना नहीं, उसको समझकर वो डिराइव करना है। तो चार घाती कर्मों का कहाँ जघन्य होता है? शपक्षे में, यानी अपने अपने बंध विच्छुति के समय, तो एक ही समय होगा उसका, दो समय नहीं होगा। और अजगण्य कब से? तो अनादि से है। भव्यों में तो अनादि अनंत रहेगा, भव्यों में अनादि शांत होगा और साधि शांत उपशम श्रेणी उतरने की अपेक्षा, दो बार उपशम श्रेणी के बीच में अंतर्मूर्त होगा, या उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी के बीच में, इस तरह से। तो उसके बाद वेदिनी और नाम का मध्यम परिणाम में होता है, और अजगण्य उसके बीच में भी हो सकता है, इसे एक समय से लेकर अधिक से अधिक असंख्यात लोग काल तक उसका अजगण्य रह सकता है, जो सूक्ष्म में रहने का काल है। गोत्र का जघन्य सातवें नरक का सम्यक तो सन्मुख वाला नारकी है, उसको जघन्य हो सकता है सातवें नरक में, और बाकी तो अजघन्य ही है। अच्छा, ऐसे ऐसे सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा, ऐसे डायरेक्ट सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है, अभी हम मार्गणाओं में देख रहे थे, औदारिक का योगी जीवों की बात चलेगी अपनी। तो औदारिक का योग में भी वो क्षपक श्रेणी तो है ही है। तो औदारिक का योगी जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल भी एक समय ही है। तो यहाँ ऐसा लिखना चाहिए जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। हमने लास्ट टाइम उसको करेक्शन किया था, आपके उसमें करेक्शन किया हुआ है ना? एक समय, हाँ ठीक है, वो बंद करेंगे तो और ज्यादा तकलीफ होगी। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है। क्योंकि अजघन्य तो एक समय कैसे होगा?
अजघन्य का एक समय
निकल दिया के नहीं, जघन्य अंतक में होता है। तो अजघन्य कब होगा? एक तो उपशम श्रेणी से उतरते समय, औदारिक कायोग में था और मर गया, तो कारमान हो गया, वैकिरिक मिश्र हो जाएगा, इस तरह से अजघन्य एक समय के औदारिक कायोग में एक समय के लिए जघन्य होगा। सामान्य से कायोग में हमको सामान्य से कायोग तो वो वैकिरिक मिल गया, इसलिए भी कायोग का कायोग रहा था। कायोग में हमने भी वहां पर भी एक समय देखा था, तो क्षपक में दसवें के उपांत समय में उसने अजघन्य किया, फिर जघन्य किया, और कायोग तभी शुरू हुआ उसके, उसके पहले मनोयोग था, वचन योग था, इसे कायोग में आया एक समय के लिए किया और फिर जघन्य किया, या उपशम श्रेणी में ग्यारहवें में गया, इसलिए वहाँ एक समय घटित हुआ था। यहाँ पर कैसे करना है? नहीं, यहाँ तो ऐसा भी लेंगे कि एक समय के लिए उसने कार्मण का सॉरी कायोग में आया, वो औदारिक कायोग में आया और फिर उसका मरण हो गया। मरण भी कर सकते हैं या फिर उसको जैसे उपांत समय में देखा था वैसे यहाँ पर भी हो सकता है।
परंतु दो जघन्य के बीच में अजघन्य
ना, उपांत है ना, लास्ट में जघन्य होता है, उसके पहले अजघन्य था। उपशम श्रेणी में दसवें के अंतिम समय में उसका अजघन्य ही था और तभी उसका कायोग चालू हो गया। तो एक समय के लिए कायोग में है, उसने अजघन्य किया, फिर ग्यारहवें में चला गया, इस तरह से ले सकते। या कायोग में आया है और एक समय में मर गया, वो भी हो सकता।
घाती कर्म में जघन्य के लिए दो अजघन्य नहीं होगा क्योंकि जघन्य
घाती कर्म में जघन्य अंतिम समय में होता है, इसलिए वहाँ दो जघन्य के बीच में अजघन्य नहीं होता। जहाँ मध्यम परिणाम में जघन्य होता है ना, वेदनीय नाम वगैरह, उसमें दो जघन्य के बीच में अजघन्य हो सकता है। तो हमको वो सोचना है बात। अब ये तो हो गई, अजघन्य का उत्कृष्ट काल कितना है? तो कहते हैं 22, कुछ कम 22,000 वर्ष, जो पृथ्वी काई की उत्कृष्ट आयु है।
हाँ,
दो समय है उसको हमने एक समय किया। हाँ, वो लास्ट टाइम हमने करेक्शन किया था उसको, क्योंकि वो अंतिम समय में जघन्य होता है तो दो समय के लिए नहीं हो सकता।
आपने किया है ना?
उसके लिए हमने रेफरेंस देखा था, पेज नंबर 20 का भी और 287 का भी। हाँ, इसी प्रकार
पेज 20 का भी।
हाँ,
दूसरा रेफरेंस
20 नंबर पर भी हमने देखा था उसको। इसी प्रकार यानी ओग में भी देखा था ना, वैसा ही वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के विषय में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके जघन्य अनुभाग बंध का काल सामान्य तीर्यंचों के समान है, यानी जघन्य का एक से दो समय, सॉरी चार समय चाहिए। वेदनीय नाम और गोत्र के लिए। हाँ, देखो क्या कहते हैं, तीसरी लाइन, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के विषय में जानना चाहिए। इनके जघन्य अनुभाग बंध का काल सामान्य तीर्यंचों के समान है। देखो सामान्य तीर्यंचों में देखते हैं हम,
एक से चार समय।
हाँ, एक से चार समय था और जघन्य असंख्यात लोग था। स्पीकर ही है, स्पीकर ही लगाए थे। हाँ, चालू करेंगे। आ रहा है, इनके यहाँ इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ, देखो देखो अभी क्या कहते हैं, हमारी बात चल रही थी औदारिक कायोगियों में, तो उसमें वेदनीय नाम और गोत्र के लिए बात है। यहाँ इसी प्रकार जो लिखा है तो एवं वेदनामा गोदम, कैसे एवं कैसे घटित होगा?
वेदनीय नाम और गोत्र कर्म में सामान्य तीर्यंच के समान जानना
है ना, पर हमेशा जो ओग में देखो या कहीं पर भी देखो, वेदनीय और नाम का तो कैसा, तो एक समय से तो चार समय होता है ना, तो इसी प्रकार कैसे कहा उन्होंने? इसी प्रकार ने चार घाती के समान तो ये नहीं हो सकता
नहीं,
है।
नहीं,
इसी प्रकार निकाल दे वेदनीय नाम गोत्र
का विषय में नहीं, पर इसी प्रकार क्यों लिखा
है? नहीं, पर इतनी विशेषता बताइए ना आगे।
इतनी विशेषता है कि इनके जघन्य अनुभाग बंध का काल
सामान्य।
अच्छा, अजघन्य के लिए इसी प्रकार।
हाँ।
इसी प्रकार अजगण्य के लिए
एक समय से
क्योंकि वो तो उसकी स्थिति है औदारिक कायोग की स्थिति, इसी प्रकार यानी अजगण्य के लिए हाँ इसी प्रकार वेदिनी आम गोत्र कर्म के विषय में जानना चाहिए।
नहीं बोला मैं यहाँ पे अजगण्य के लिए तो इसी प्रकार है अजगण्य का अनुभव सामान्य के लिए जो के समान लिया
वही तो अजगण्य काल इसी प्रकार है कुछ कम 22,000 वर्ष एक समय से कुछ कम 22,000 वर्ष मैं बताती हूँ। इसी प्रकार वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के अजगण्य अनुभाग बंद के विषय में अभी वाक्य पढ़ती हूँ। इसी प्रकार वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के अजगण्य अनुभाग बंध के विषय में जानना चाहिए। अभी बराबर हो ना एक समय से कुछ कम 22,000 वर्ष इतनी विशेषता है कि अभी हम इतनी विशेषता ठीक है इनके जगण्य अनुभाग बंध का काल यानी इसी प्रकार किसके लगाया हमने अजगण्य के लिए और विशेषता जगण्य की बताई उन्होंने। जगन्य अनुभाग बंध का काल सामान्य तीर्यंचों के समान है तो सामान्य तीर्यंचों के समान है जब कहते हैं हाँ एक से चार समय एक से चार समय परंतु उसमें
जगन्य का तो
एक समय से चार समय हाँ नहीं गोत्र कर्म के लिए एक समय होगा हाँ बंद करती हूँ। देखो देखो गोत्र कर्म का जगन्य कौन करेगा सर्व विशुद्ध अग्नि का एक वही को
ये सब पूरा चेंज करना पड़ेगा
नहीं नहीं चेंज नहीं करना है उन्होंने सामान्य तीरेंजों के समान बता दिया तो सामान्य तीर्यंचों में भी
गोत्र कर्म का एक समय
दो समय था एक समय से दो समय
हाँ एक समय से दो समय तो बराबर है वो सामान्य तीर्यंच के समान ही हो गया ना।
तो वेदिनी नाम का एक से चार समय और गोत्र का एक से दो समय
हाँ हाँ बराबर
हाँ सामान्य तीर्यंचों के समान है जो बताया है तो सामान्य तीर्यंचों के समान हम देखेंगे कि वेदनी और नाम का एक से चार समय और गोत्र का सर्व विशुद्ध वाला है ना एक से दो समय जगन्य एक समय से लेकर कुछ कम 22,000 वर्ष वो तो ऊपर लिखा उन्होंने। अभी फिर से सब कंफ्यूजन अभी फिर सुनो नहीं तो फिर घोटाले हो गए। पहले उन्होंने चार घाती कर्मों की बात बताई है औदारिक कायोग में शपक श्रेणी में भी औदारिक कायोग है तो वहाँ घाती कर्मों का एक समय के लिए जगन्य होगा एक बात उसके अजगन्य के लिए क्या करना है एक समय कैसे तो योग शुरू हुआ और फिर उसने करके वो मर गए वगैरह वगैरह और अजगण्य का उत्कृष्ट काल पृथ्वी का एक में कुछ कम 22,000 वर्ष यहाँ तक हो गए। हम एक एक कर्म की बात करते वेदनी और नाम की बात पहले उठाते उसका जगन्य कहाँ होता है तो मध्यम परिणाम में होता तो मध्यम परिणाम में एक से चार समय जगन्य काल एक समय जगन्य का उत्कृष्ट काल चार समय
गोत्र के लिए अलग
अभी गोत्र की बात पूछी क्या मैंने वेदनी और नाम दोनों ही की बात चल रही है एक एक अलग अलग ले रहे तो वेदनीय नाम के लिए एक से चार समय और उत्कृष्ट काल अजगण्य का एक समय से वो तो 22,000 वर्ष यहाँ तक हो गए। अब गोत्र का जगन्य कौन करेगा औदारिक कायोग में क्योंकि वो नारकी तो नहीं ले सकते तो बादर अग्नि का एक वायु का एक को लेंगे तो सर्व विशुद्ध दो ही समय तक रह सकता है तो वहाँ
जगने के लिए एक समय
क्योंकि सर्व विशुद्ध हुए तभी नीच गोत्र बांध रहा है, इसलिए उसका जगन्य हुआ है। अन्यत्र क्या है, विशुद्ध होगा तो उच्च गोत्र बांधेगा, यहाँ नीच गोत्र का अनुभव मिनिमम है।
तो यहाँ पे
हाँ
दो समय हो गए
अभी, कितना हुआ, एक समय से दो समय, अभी हाथ नहीं लेके बोलो आप, कोई बात नहीं। हाँ
जगने के लिए एक से दो समय,
एक से गोत्र कर्म के जगने के लिए एक से दो समय, और जगने के लिए वही
22,000,
एक समय मिनिमम और मैक्सिमम कुछ कम 22,000 वर्ष, ये गोत्र की बात हो गई।
आयु को लिया है ना
कुछ कम 22,000,
आयु का लिया है।
देखो देखो आयु के लिए सर्वत्र एक ही बात बताई शुरुआत में, ओग में ही बात बताई,
जगन्य
क्या होता है,
जगन्य पर्याप्ति,
जगन्य कितना होता है, एक समय से चार समय, स्वामी तो नहीं लेना है, एक समय से चार समय काल, और अजगन्य दो जगन्य के बीच में एक समय के लिए भी हो सकता है, मिनिमम
एक समय से अंतर्मुख,
मैक्सिमम जगन्य किया ही नहीं तो अंतर्मुख। यहाँ तक समझ में आई बात, उन्होंने ओग में आयु का बताया और कहता है ऐसा ही सभी मार्गणाओं में जानना है, जहाँ जहाँ आयु बनती है वहाँ ऐसे ही समझना, इसलिए अन्यत्र सभी मार्गणाओं में आयु की बात नहीं उठाई है। अब ये हो गया औदारिक कायोगी का, औदारिक मिश्र कायोगी जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि औदारिक मिश्र में जगन्य कौन करेगा, तो पर्याप्त जो जीव जिसकी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था चल रही है, और जो शरीर पर्याप्ति पूरी करने वाला है तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के पूर्व समय में, यानी औदारिक मिश्र का वो अंतिम समय है। पंचेंद्रिय करेगा, संगी पंचेंद्रिय करेगा, और वो तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के पूर्व समय में करेगा, और वो भी वहाँ सर्व विशुद्ध होगा, तो क्योंकि किसी के संकलेश भी वहाँ ज्यादा हो सकते, किसी की विशुद्धि भी हो सकते, तो विशुद्धि ज्यादा है तो वो एक समय के लिए उसका जगन्य होगा, ये ख्याल में है ना बात। तो देखो चार घाती कर्म को भी और गोत्र कर्म को भी यहीं पर लिया। अब औदारिक मिश्र में गोत्र कर्म के लिए किसको लिया, वादर वायु का एक अग्नि का एक जो पर्याप्त है और शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने जा रहे हैं, निज गोत्र का बंध कर रहे हैं सर्व विशुद्ध एक समय के लिए। अजगन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर में, यहाँ अजगन्य का एक समय बताया है वो घटित नहीं होता, क्योंकि जगन्य जब अंतिम समय में हुआ तो अदरवाइज तो अजगन्य है, तो अंतर्मूत औदारिक मिश्र कोई औदारिक मिश्र में रहेगा तो अंतर्मूत तक तो रहेगा ही रहेगा, और उसको जगन्य अंत में करेगा, या कोई ऐसा जीव के करेगा ही नहीं तो उसका औदारिक मिश्र का जो काल एक जीव की अपेक्षा तो अंतर्मूत तक रहेगा। आप कहेंगे बारम्बार वो औदारिक मिश्र में ही रहेगा, अनेक अपर्याप्त भोग करेगा तो भी अंतर्मूर्त ही होगा, इसलिए उत्कृष्ट काल जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त। देखो ये निकालना, जगन्य के बाद काल शब्द है वो भी निकालो, उसके बाद एक समय है तक निकालो, एक समय है तीन शब्द यहाँ से निकले, तो पढ़ेंगे अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त।
हाँ
लिखा था, हाँ अच्छा जैसे ऊपर औदारिक कायोगी के लिए 87 लिखा था वैसे है 88, वहाँ तो उत्तर प्रकृतियों की बात है ना, उसकी अपेक्षा से यहाँ हमने नक्की किया था। वेदनीय और नाम कर्म का भंग अपर्याप्तकों के समान है, अपर्याप्त नहीं उसका मध्यम परिणाम में होता है, तो एक से चार समय हो जाते हैं अपर्याप्तकों के समान, एक से चार समय, और उसका अजगन्य का काल कितना होगा, मिनिमम एक समय दो जगन्य के बीच में, और मैक्सिमम अंतर्मूर्त औदारिक मिश्र का रहने का काल। इसी प्रकार वैकृत मिश्र का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों में जानना चाहिए।
या गोत्र कर्म के लिए
हाँ, तो वैकृत मिश्र का योगी में वो सातवें नरक का नार के नीच गोत्र का बंध कर रहा है, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पूर्व समय में, इस तरह से ले सकते हैं। आहारक मिश्र में आयु की विशेषता थी, उसका अजगण्य भी एक समय हो सकता है, ये उसकी विशेषता है, ये हमने पहले पढ़ा था। वैकृत कायोगी जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का काल उत्कृष्ट के समान है। अब जघन्य जो है ना, चार घाती कर्मों का वैकृत कायोग में कौन जघन्य करेगा, तो समय दृष्टि जो सर्व विशुद्ध वाला एक समय से दो समय तक कर सकता है, और अजघन्य अनुभाग बंध का काल दो जघन्य के बीच में एक समय के लिए अजघन्य कर सकता है, परंतु वैकृत कायोग कितने काल तक लगेगा रहेगा, क्योंकि मनोयोग और वचन योग भी होता रहेगा, अंतर्मूर्त से ज्यादा है नहीं, तो अंतर्मूर्त होगा एक समय से अंतर्मूर्त।
वैकृत मिश्र कायोग में गोत्र कर्म का जघन्य तो विषय दृष्टि करेगा ना, नीच गोत्र बांधेगा तभी करेगा।
यहाँ वैकृत मिश्र हो गया हमारा,
नहीं अभी आपने बताया ना कि वैकृत मिश्र का युग में जगन्य गोत्र कर्म के लिए,
वैकृत मिश्र का योग में शरीर पर्याप्ति के पूर्व समय में उसका सर्व विशुद्ध है, और सातवें नरक का नारकी तभी गोत्र कर्म ही बांध रहा,
तो वो
वो निज गोत्र ही बांध रहा है, वहाँ उसी को लेना, वही बात हो गई, उसकी बात हमने बता चुकी।
अच्छा,
अभी हम वैकृत का योगी की बात देख रहे थे, वैकृत मिश्र तो हो गया। अच्छा, वो बात भी हमने बता दी। वैकृत कायोगी में क्या है, तो चार घाती कर्मों का जघन्य कहा है, ये तो पर्याप्त जीव है, तो चौथे गुण स्थान वाले को विशुद्धि ज्यादा है, तो वहाँ उसका जघन्य होगा, तो जघन्य होगा तो सर्व विशुद्ध अवस्था एक या दो समय तक रहेगा चार घाती कर्मों के लिए। उसका अजघन्य दो जघन्य के बीच में एक समय ही रह सकता है,
एक समय
या पूरा अंतर्मूर्त काल वैकृत कायोग का उसमें देख। गोत्र कर्म के यहाँ अजघन्य लिखा, उसको जघन्य करो, ऊपर जह लिखा है वो गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का, जघन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि गोत्र कर्म का जघन्य कब होता है, वैकृत कायोग में सम्यक के सन्मुख सातवें नरक का नारकी, तो जघन्य अनुभाग एक समय के लिए होगा उसका, यानी जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अभी ऊपर हमने करेक्शन किया था, ऊपर देखो गोद जह लिखा है ना, तो जह के बाद उक भी लिखना था, जह उग एग इतना चाहिए था, एग सम वो उक उन्होंने लिखा ही है। अभी क्या करना है, सम है ना अंत में, चत्तर ही निकालना पड़ेगा, देखो कैसे करना मैं बताती हूँ, चत्तर ही निकालना है आपको। देखो यहाँ कैसे लिखा है, गोद जह, यानी वो जह लिखा है, उसके बाद एग लिखा है, तो यहाँ पाकपत करना और यहाँ उक्क लेना, उसके अंदर उक्क तो लिखा है, उसको गोल करके यहाँ लेना, यानी जह उक्क एग, बाद में चत्तारी निकाल दो और सम रखो, पहली लाइन में किया था ना हमने, ओरालिका गादी चार जह जह और उक्क एग सम, बे निकालना, सम रखो, जह उक्क एग, और बे निकाल लेना। ऐसे यहाँ गोद जह उक एग सम है ना, तीसरी लाइन में अज जह जह एग निकाल देना, जह उक अंतो। हाँ समझ में आई, लास्ट एग निकाल देना, मैंने जह भी और उक भी अंतम हो। ये हो गया हमारा, ये पेज हो गया। अभी 40 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। देखो गोत्र कर्म का क्या पढ़ा हमने, जघन्य अनुभाग बंध का, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि वैकृत का योग में वो सातवें नरक का नारकी करेगा करण लब्धि के अंत में, और अजघन्य अनुभाग बंध का काल अनुत्कृष्ट के समान है। अजघन्य देखो देखो अजघन्य एक समय भी होगा, क्योंकि वैकृत का युग एक समय के लिए रह सकता है कि नहीं रह सकता है। मरण के पूर्व एक समय के लिए वैकृत का युग में आया मनोयोग से, फिर मर गया, तो एक समय हो सकता है। तो वहाँ उसने अनुत्कृष्ट किया, सॉरी अजघन्य किया, और मैक्सिमम वैकृत का युग में रहने का काल अंतर्मूर्त है, तो एक समय से अंतर्मूर्त। ये ख्याल में है ना बात, आपका हो गया क्या वो कि पहले पेज पर? हाँ नेक्स्ट पेज पर आ गया। हाँ 40 पेज पर, वो सब बाद में क्रोधादि में करेंगे बाद में। नहीं नहीं नहीं, वो तो जब विषय आएगा तब बताएंगे उसको। अब हम वैकृत कायोग में देख रहे थे वेदनी और नाम कर्म के, जघन्य अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है। ये मध्यम परिणाम में होता है, मिथ्या दृष्टि हो या सम्य दृष्टि हो, 1-4 समय तक होगा जघन्य। अजघन्य अनुभाग बंध का काल ज्ञानावरण के समान है, यानी मिनिमम एक समय, मैक्सिमम अंतर्मूर्त। इसी प्रकार आहारक कायोगी जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्र कर्म के, अभी इनमें गोत्र कर्म कौन बांध रहा है? अभी उच्च गोत्र ही बांध रहा है सारे, तो अभी उच्च गोत्र का जघन्य कब होगा? आहार का योग्य नहीं, गुणस्थान कौन सा है?
छठा। तो उसमें
विशुद्धि में क्या होगा उच्च गोत्र का?
जघन्य होगा ना? नहीं
आप बोलो, घाती का जघन्य कहाँ
होगा? हाँ
संकलेश में जघन्य होगा, संकलेश में जघन्य होगा। तो आहार का योग में संकलेश में जघन्य, तो संकलेश का 1-2 समय तक होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, इतनी विशेषता है कि में गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल 2 समय, क्योंकि सर्व संकलेश वाला लेना है। इसलिए 2 समय तक ही हो सकता है। फिर अजघन्य का क्या करेंगे? एक समय से अंतर्मुख। नहीं नहीं, उन्होंने इसी प्रकार लिखा ना, पहले तो इसी प्रकार लिखा है, परंतु हम वेदनीय नाम का 1-4 समय था, गोत्र का तो पहले बता चुके थे, गोत्र का तो एक समय बता चुके थे,
यहाँ पे 1-2 थे,
तो यहाँ
1-2
समय लेना, क्योंकि हमको स्वामित्व देखना है कौन कर रहा है। इसी प्रकार केवल काल की समानता बताई, पर उसमें रीजन अलग बात है, तो हमको उसके काल डिराइव कर सकते। कार्मण कायोगी जीवों में 5 कर्मों के, 5 कर्म ने गोत्र को साथ लेना, जघन्य अनुभाग बंध का, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय। हमने देखा था कार्मण का योग में दूसरे समय में जघन्य होगा उसका, संगी पंचेंद्रिय है कार्मण का योग में है, और गोत्र कर्म का तो सातवें नरक में जन्मने वाले को वहां लेना है। यानी हर एक का जघन्य अलग अलग है, परंतु गोत्र
हाँ, के लिए ना, सेकंड समय में
बराबर चार घाती और गोत्र कर्म, पांच कर्म है ना।
गोत्र के लिए तो वो ना
एक समय ही होगा।
नहीं, स्वामी अलग है ना,
स्वामी केवल सातवें में रखा है।
हाँ,
परंतु उसका जगन्य एक समय दोनों सबको। हाँ,
चार घाती कर्म के लिए सम्यक दृष्टि लेना पड़ेगा और गोत्र कर्म के लिए भी
चार घाती के लिए समय दृष्टि लेना पड़ेगा सर्व विशुद्ध वाला।
क्वेश्चन था, हम लोग जो मिश्र का योग में
चार घाती में द्वितीय क्षण के साथ मरकर जाने वाला था क्या?
ऐसा
था, जरा देखो देखो देखो,
समय दृष्टि द्वितीय क्षण से जाने वाला
स्वामित्व में देखो, कारमान का योग में। हाँ, 21 पे नहीं नहीं असंयत है, साकार जागृत सर्व विशुद्ध असंयत लिया। और बाकी समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि किस कर्म के लिए देखा था हमने? वो
एक जगह देखा था हमने,
कहीं पर जा देखा था कर।
एक मेरा क्वेश्चन था, ये सर्व विशुद्धि जो मिश्र का योग में होती है वो पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय में जाने वाले कोई होगी ना? में उत्पन्न होता है वहाँ पे भी
हो सकती है, क्योंकि वो अंतिम समय लेना है बस इतना ही।
नहीं, अंतिम समय
कारमान का योग में तो बात अलग है,
कारमान का योग में तो पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय वाले को लेना पड़ेगा, पर
यहाँ स्थिति की बात नहीं है, अनुभव की बात है।
नहीं, पर अनुभव भी इतने विशुद्धि तो पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय में उत्पन्न वाले को होगी ना?
हम ही नहीं लगा सकते जब तक यहाँ शास्त्र में कथन नहीं आता, हमारी ओर से हम ही वाला नियम नहीं बना सकते, सोच सकते हैं उसके ऊपर।
नहीं, पर ऐसे नहीं समझना चाहिए ना, तो
इलेवन पेज पे वो उत्कृष्ट था, वो वेदिनी नाम गोत्र का
वो तो प्रशस्त है ना, उसके लिए ना, तो वो ही दिया था हम लोग ने,
वो वाली बात थी, वो अलग बात।
उत्कृष्ट अनुभाग का बनता था स्वामी
वैकरिक मिश्र में, वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट था क्योंकि वहाँ उच्च गोत्र ही बनता था, वो बात अलग है। अब यहाँ जगन्य की बात कर रहे हैं, चार घाती कर्मों को तो सम्यक दृष्टि है और गोत्र का तो
मिथ्या दृष्टि।
हाँ, सातवें नरक,
सातवें नरक का मिथ्या दृष्टि।
क्योंकि कारमान का युग में मिथ्या दृष्टि है, फिर से पढ़ती हूँ मैं, पेज नंबर 40 लाइन नंबर 4। कारमान का योगी जीवों में पांच कर्मों के कहने से चार घाती और एक गोत्र कर्म, जघन्य अनुभाग बंध का, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल तीन समय है। तीन समय कारमान का योग में एक इंद्रियों के लगेंगे। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल तीन समय है। क्योंकि जघन्य ऐसे भी मध्यम परिणाम में होता है और जघन्य का उत्कृष्ट काल, अन्यत्र हम चार समय देखते हैं, उन कारमान का योग चार समय के लिए होता ही नहीं है, तो जघन्य भी तीन समय तक रह सकता है, जघन्य भी तीन समय तक रह सकता है, ये कहना है। विशेषार्थ, इन पूर्वोक्त योगों का काल और इनमें सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का स्वामित्व जानकर उक्त काल ले आना चाहिए, कोई विशेषता न होने से यहाँ हमने अलग अलग खुलासा नहीं किया, क्योंकि स्वामित्व में बता ही चुके थे। अब वेद मार्गना में स्त्री वेदी जीवों में चार घाती कर्मों के कहा गया, स्त्री वेदी जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय है। क्योंकि कहा होता है स्त्री वेद का अंतिम समय में शपक, यानी सवेरी के अंतिम समय, सबका एक ही समय में होगा ना वहाँ पर। वेदनीय नाम और वो, हाँ, अजगन्य, अजगन्य रह गया, अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय है। अजगन्य का जगन्य अभी तेजल आप बताओ। श्री वेदी हुआ एक समय के लिए अनुभाग बंद किया और देव में गया तो पुरुष वेद में चला गया, क्योंकि अन्यत्र जब तक श्री वेदी था तो अजगन्य करता रहा था। अब अजगन्य का उत्कृष्ट काल कैसे निकालेंगे? श्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल काय स्थिति?
सौ पल्ले पृथक,
सौ सागर, सौ पल्ल्य पृथक, सागर तो पुरुष वेद के लिए, सौ पल्ल्य पृथक तो सौ पल्ल्य पृथक तो प्रमाण है। हाँ, क्योंकि उसने जगन्य नहीं किया तो लगातार अजगन्य नहीं कर रहा था जब से श्रीवेद में आया है, तो अब 55 पल्ले केवल देवी का काल, हाँ वो नहीं लेना है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के, अब श्रीवेदी जीव है तो हमको ना ही वो एकेंद्रिय को सोचना है ना ही नरक को सोचना है, तो उसको मध्यम परिणाम में सब वेदनीय नाम के साथ उसको गोत्र को लेना पड़ेगा। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल चार समय है। समझ में आए ना बात? यहाँ क्यों गोत्र को भी उसके साथ लिया, मध्यम परिणाम वाला
तो कहाँ पर भी हो सकता है ना, कोई भी
कहीं पर भी, हाँ कहीं समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहीं पर भी होगा। अजघन्य अनुभाग बंध का काल ज्ञानावरण के समान है, इन्हें एक समय से सौ पल्ले पृथक। इसी प्रकार पुरुष वेदी जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनमें चार घाती कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। मयंक भाई अंतर्मूर्त कैसे होगा? दो श्रेणी के बीच, क्योंकि स्त्रीवेद तो एक समय मरकर देव हुआ था, अब ये देव भी हुआ तो क्या पुरुष वेद ही रहेगा, इसलिए इसका एक समय तो अनुभूतित नहीं होता। तो हमें दो अंतर्मूर्त कैसे होगा? देव में गया तो लगातार अजगन्य करता रहेगा, तो यहाँ क्या लेना है? एक बार श्रेणी उतरा फिर दोबारा श्रेणी चढ़ा तो बंद रुक गया, इस तरह से। तो मिनिमम अंतर्मूर्त लिया चार घाती कर्मों के अजगन्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट काल सौ सागर पुस्तक, यानी पुरुष वेद में रहने की जिसको हम काय स्थिति कहते हैं उत्कृष्ट काल, ये लगातार रहने का काल और लगातार श्रीवेद में रहने का काल सौ पल्ल्य पृथक। एक हाँ देवलाली में एक शिविर था तो वहाँ ये बात उठाई थी वेद मार्गना ने, ये सौ पल्ल्य पृथक। तो उसके बाद क्लास होने के बाद बहुत चार पांच जन ऐसे एकदम लेडीज महिलाएं आई एकदम, अरे अरे श्रीवेद छेदने के लिए ये ऐसा नहीं पड़ता है कि नहीं तो कायम स्त्री में ही रहना, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। अनादि से कभी नपुंसक वेदी हुआ पुरुष वेदी हुआ तो स्त्री वेद में से पुरुष वेद में जन्मने के लिए इतना काल रहना पड़ेगा ये भी नहीं, तो मैक्सिमम लिमिट बताए। स्त्री का एक भोग करके पुरुष हो सकता है, नपुंसक में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए नहीं नहीं, हमको ऐसा लगा कि स्त्री वेद छेदने के लिए वो तो समय दर्शन, हाँ समय दर्शन होने के बाद स्त्री में जन्मेगा नहीं वो तो बात सच है, परंतु केवल पुरुष में जन्मने के वो तो हाँ समय दृष्टि को नहीं आता स्त्री न पुस्तक भी न वगैरह, पर नहीं ऐसे जो कथन पद्धति स्त्री वेद को छेदना है, स्त्री वेद को छेदना है, छेदना है नहीं क्या समय दर्शन का
नहीं, पर उनका कथन ऐसे था कि पुरुष वेद अच्छा है,
ऐसा ही मान्यता है ना, स्त्री होने से पुरुष होना अच्छा है।
और ये तो भाववेद की बात है, पर वो
भाववेद हो या द्रव्य वेद
नहीं बराबर है, पर ये पुरुष वेद अच्छा है वो भी तो गलत मान्यता है।
अभी कोई भी वेद कहाँ अच्छा है, कोई भाव लेना ही अच्छा नहीं है, पुरुष में जन्मे स्त्री में जन्मे और वो कहाँ सम्यक तो में बाधा है,
हाँ? नहीं, कोई भी बंद खराब देगा
भाव धारण किया तो कोई ना कोई वेद में जन्मेगा ही जन्मेगा। हाँ देखो
अच्छा मानेंगे तो उससे दूर होना
पड़ेगा। नहीं ऐसा जोगे ना स्त्री होना अच्छा नहीं पुरुष होना अच्छा है, यानी लौकिक में ऐसी मान्यता सब जगह चलती है अपगत वेदी जीवों में। सात कर्मों के जघन्य अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब देखो सात कर्मों में आपको डिवाइड करना है तेज। अपगत वेदी है चार घाती कर्मों का जघन्य कब होगा लास्ट में बंद विच्छित्ति के समय। और वेदी नाम गोत्र का जघन्य कब होगा गोत्र का जघन्य। तो वेदिनी नाम गोत्र का जघन्य चाहिए हमको।
हाँ
श्रेणी चढ़ के उतरा उपशम श्रेणी क्योंकि उसके संकलेश में उच्च गोत्र ही बन रहे हैं यहाँ पर ये प्रशस्त प्रकृतियां ही बन रही है तो उनकी प्रशस्त प्रकृति का जघन्य कब होगा
संकलेश।
अपगत वेदी में संकलेश सबसे ज्यादा कब है उपशम श्रेणी उतरते समय अंतिम समय सवेदी होने के पूर्व समय। हाँ चार घाटी का चपक यानी बंद विच्छित्ति के समय पर दोनों का काल एक ही समय है स्वामी जुदा जुदा है इसलिए सातों को इकट्ठा लिया। और अजगन्य अनुभाग बंद जगन्य काल एक समय है उत्कृष्ट काल अंतर्मुख। अब यहाँ जगन्य काल एक समय कैसे हुआ अपगत वेदी हुआ और एक समय में मर गया तो अपगत वेद में रहने का ही एक समय काल है। विशेषार्थ स्त्री वेदी जीव का जगन्य काल एक समय है और पुरुष वेदी अंतर्मुहूर्त है इसलिए। परंतु स्त्री वेदी का जगन्य एक समय कब वो श्रेणी से उतरते समय स्त्री वेद में आया और मर गया उस अपेक्षा से हो नहीं तो स्त्री वेद में जन्मा और एक समय में मरा ऐसा नहीं होगा कभी। अंतर्मुहूर्त तो पर्याप्त जीवों के ही होगा ना स्त्री वेद पुरुष वेद और यहाँ अंतर्मुहूर्त है इसलिए इनमें सात कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल क्रम से एक समय 41 निकाल देना और अंतर्मूर्त कहा है ये गलत वहां छपा
ये अंतर्मूर्त कैसे लिया है जघन्य अनुभाग मतलब
क्या कहा
स्त्री
अजघन्य अनुभाग
जघन्य एक ही समय होगा ना अंतर्मूर्त नहीं होगा
एक मिनट स्त्री वेदी और पुरुष वेदी की बात चल रही फिर से सुनना। विशेषार्थ में स्त्री वेदी जीव का जगन्य काल एक समय पुरुष वेदी का अंतर्मुहूर्त इसलिए इनमें यानी स्त्री और पुरुष वेदियों में सात कर्मों के अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल क्रम से लिखा है।
अच्छा
एक समय ने स्त्री के लिए और अंतर्मुहूर्त पुरुष वेदी के लिए 41 निकाल दिया हमने वो निकाला था लास्ट टाइम ही निकाल ये अंतर्मूर्त था वो पुरुष वेदी के लिए
ये जगन्य काल की बात है।
हाँ उत्कृष्ट तो अपने अपने काय स्थिति
यानी
सौ पल्ल्य पृथक्त्व और सौ सागर पृथक्त्व। अब आगे बढ़ते हैं क्रोधादि चार कषाय वाले जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब चार घाती कर्म ने क्रोध कषाय वाले तो कषाय के जो अपने अपने उदय विच्छित्ति है वहाँ उसका अंतिम समय लेना क्षपक वाले के वो एक समय के लिए होगा। गोत्र कर्म का
वही
सातवें नरक का नार के चारों कषाय वाले में किसी कषाय के साथ वो
प्रथम
सम्यक तो प्राप्त कर रहा है उसको लेना तथा अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है यानी कषाय का एक समय काल हो सकता है मरण या व्याघात की अपेक्षा एक समय तक उस कषाय रह सकता है और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त। वेदनीय और वो और दिख नहीं रहा और नाम कर्म का भंग गोत्र तो बता चुके वेदिनी और नाम कर्म का भंग अपर्याप्तकों के समान है, क्योंकि अंतर्मूर्त है ना, यानी जगन्य एक से चार समय है और अजगन्य एक समय से अंतर्मूर्त है। अब ये हो गई हमारी कषाय मार्गना, ऊपर 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 करेक्शन है प्राकृत में। देखो क्रोधा क्रोधादि चार, घादी चार, गोद जहन्न का जहन्न एग लिखा है ना, तो जहन्न का जहन्न और उपकस एग, जह जह दो बार बराबर है, यहाँ पर भी दूसरे जह के बाद और एग के पहले वो काग पद डालना और उपक को राउंड करना, यानी आप कैसे बताएंगे कैसे गोद जहन्न जहन्न उपक एगस और बे निकालना सम रखो चलेगा एग सम बे बे रख बे निकालो सम रखो यानी एग सम और ज जह एग उपक अंतो, ये तो हमने अभी पढ़ा था, और वेदनामा अपचत भंगो वो भी देखा हमने, एक से चार समय और अजगन्य का एक समय से अंतर्मूल। अब हम आते 41 पेज पर 41 ज्ञान मार्गना यहाँ से शुरू होगी। मत्ते ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी को छोड़ दिया, हाँ क्यों
वहाँ पे तो श्रेणी कहते नहीं नहीं
मत्स्य ज्ञानी में चार घाती का कहाँ हो, एक समय होगा ना, संयम के सन्मुख है वो करण परिणाम है, एक समय
के समय हो
जाएगा। और गोत्र का तो होता है नरक में, वो भी मिथ्या दृष्टि मार्गना में आता है, तो ये हो गया वहाँ पर। बाकी वेदिनी नाम वो तो मध्यम परिणाम होते, एक से चार समय वो भी होता है
का तो नहीं करते।
और वो सारे भंग बन जाते हैं अनादि अनंत वगैरह, अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत आगे बढ़ेंगे। विभंग ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के, एक्चुअली मिथ्या दृष्टि में वेदिनी नाम का अजगन्य का अंदर कितना होगा, अजगन्य का काल कितना होगा
मिथ्या दृष्टि के लिए,
हाँ मिथ्या तो मार्गना में असंख्यात लोग लगता है मुझे
नहीं, का तो संयम के सन्मुख वाले को ही होगा।
तो मैंने वैदिनी नाम की बात पूछी है,
हाँ वहाँ पे असंख्यात लोग हो जाएगा वैद्यों नाम कर्म में,
क्योंकि चार घाती और गोत्र के लिए तो अनादि अनंत वगैरह
वो नाम पे वैदिनी नाम तो असंख्यात
असंख्यात लोग होगा। 35 पेज पर ओग में बताया था,
यहाँ पे लिखने ना चाहिए,
और उसमें लिखा था ना ओग के समान मत्ते ज्ञानी श्रुता ज्ञानी सब में है। अभी हम विभंग ज्ञानी की बात पढ़ेंगे 41 पेज पर। विभंग ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के, जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय है। अभी ये भी कैसे डिराइव करना, विभंग ज्ञान में चार घाती कर्म का किसका होगा, संयम के मनुष्य नहीं, देव में तो होता ही होता है, वो तो गोत्र में देव को लेना है, सॉरी नारकी को लेना सातवें नरक में, तो पांचों कर्मों का क्या होगा, एक समय होगा। तथा जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है।
जगन्य का एक समय के लिए विभंग ज्ञान नहीं समझता है,
हमने देखा था ना कि शासादन में आया है कोई
और मरण हो गया,
सॉरी मरण हुआ शासादन में आकर मरण, क्योंकि सारे ही जो विभंग ज्ञानी है वो अजगन्य कर रहे हैं, जो नारकी छोड़ो सातवें नर का नारकी छोड़ो करण लब्धि वाला, बाकी तो सब अजगन्य कर रहे हैं। तो वो शासादन में वो एक समय घटित होगा,
तो लोग का विभंग
नहीं, मनुष्य निरंजन में अंतर्मूर्त ही रहता है उनका, तो पहले दूसरे गुणस्थान में तो विभंग ज्ञान ही है, विभंग ज्ञान से जानते भी रहते हैं ना। नहीं वो हीन अधिकता कैसी है, वो तो भाव प्रत्यय है उनके, होता ही होता है। कौन से नरक वाला कितने योजन तक का जानता है, वो सारी लिमिट है उसकी, उसमें अवधि है ना, वो तो उसमें अवधि लिमिट होती है। देवों की भी ऐसी है, कहाँ तक उनकी अवधि चलती है उसकी मर्यादा।
मिनिमम तो बहुत कम है ना,
हाँ कुछ योजनाओं के होते हैं।
नहीं मिनिमम तो हम लोग जो देखा था कि
वो तो यहाँ के अवधि ज्ञान की वो मिनिमम की बात थी, यानी वो एक प्रदेश तक जानता है।
तो विभव ज्ञान में योजना में जानता है
वो मनुष्य की रेंज में जो मिनिमम से
वो तो अंतर्मूर्त क्लियर रहता है, तो वापस अंतर्मूर्त में हो सकता है विभव ज्ञान,
हो सकता है अंतर्मूर्त छोड़कर बात नहीं, लगातार अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा बस इतना।
नहीं मगर वापस होगा,
हो सकता है। मैं हमेशा उसका उदाहरण देती हूँ, वो नस्टर डैम वाला, उसका ऐसा पिक्चर भी है ना, टेबल पर बैठा है और वो कुछ सिगड़ी बिगड़ी रखे हुए, यानी कुछ विशिष्ट उस काल में उसका वो तो लगता था, उसका फिर लिखता था, छुटता होगा ना, बारंबार 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 करता रहता।
मैं अभी तक एक ही समझ देता था कि विभव ज्ञान मनुष्य को विशुद्धि में होगा,
नहीं
कहाँ पे भी हो सकता है
कहीं तो। अभी विभंग ज्ञान में वो सूक्ष्म पर्याप्त का भी बंद करते हैं, हमने देखा था मारणांतिक वहां तक करते हैं, तो विभंग ज्ञान में विशुद्धि होनी चाहिए जरूरी नहीं है। अभी यहाँ क्या देख रहे थे हम, चार घाते और गोत्र की बात पढ़ी, उसके अजगन्य का जगन्य का अलग समय है, साधन में तो होगा ही होगा। परसों हमने ऐसे मनुष्य में एक समय के लिए प्राप्त हुआ मर गया ऐसा हम कुछ सोच रहे थे कल परसों, परंतु सांसाधन में ज्यादा वो संयुक्तिक लगता है। एक समय नहीं तो कैसे सोच लेंगे, एक समय के लिए विभंग ज्ञान हुआ तो मरण के समय उत्पन्न हुआ ऐसा हम सोच रहे थे, परंतु उससे सांसाधन में तो देवनारकी में तो घटित हो ही जाता है, क्योंकि औषमिक समय तो था तब तक तो उसको अवधि ज्ञान था, साधन में आते ही विभंग ज्ञान हुआ, एक समय में मर गया छूट गया विभंग ज्ञान।
तो अजगन्य के लिए वो लेना ना,
हाँ जगन्य काल एक समय है साधन में लेना, यानी साधन वाला देवनारकी, क्योंकि मनुष्य में वो विभंग ज्ञान होने का नियम नहीं है, वहां पर देवनारकी में भव प्रत्यय है ही, इसलिए वो नियम से उसको विभंग ज्ञान होगा ही। आएगा ना, नरक में जाता नहीं है पर नरक से निकलेगा ना, छठे नरक तक के जीव साधन में निकल सकते हैं। साधन में आए उसको भूल गए हैं, वो शादी में इत्यादि से हो गई ना, मुझे लगा आप निकले थे और भूल गए। बहुत अच्छा हुआ ना साधन से निकले हैं अभी।
सभी तो काम कर दिया।
वेदनीय और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंद का काल ओघ के समान है,
एक से चार समय,
यानी विभंग ज्ञान क्यों ना, वो तो एक के चार, एक समय से चार समय, और जघन्य अनुभाग बंद का काल ज्ञानावरण के समान है।
ज्ञानावरण के समान क्यों लिया,
कुछ कम 33 सागर
एक समय
से कुछ
ज्ञान
कम, विभंग ज्ञान, विभंग ज्ञान का काल लेना है। आगे बढ़ अभी निबोधिक ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवन में, अब ये समय दृष्टि है, चार घाती कर्म एक शपक के हो गए और गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंद का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब यहाँ गोत्र कर्म का किसको लेंगे तेजल, हाँ कौन सा समय दृष्टि लेना, कहाँ पर लेना है, एक ही समय बताया है बरबर, उच्च गोचर का लेना है, समय दृष्टि को लेना है, वो तो विशुद्ध ही ज्यादा है।
मिथ्यात्व के सन्मुख
चौथे गुणस्थान वाला मिथ्यात्व के सन्मुख लेना सर्व संकलेश वाला,
इसलिए एक समय लेना।
जैसे विशुद्धि चढ़ते समय करण लब्धि में एक समय लेते हैं, मिथ्यात्व के सन्मुख वाले भी उसके संकलेश बढ़ते बढ़ते अंतिम समय में उसको सर्व संकलिष्ट हो जाता है। तो चौथे गुणस्थान वाला मिथ्यात्व के सन्मुख वाला वो एक ही समय लेना है, यानी गोत्र के लिए वो हाँ कोई चारों गति का, चारों गति, चारों गति का मिथ्यात्व के सम्मुख, और चार घाती कर्म के लिए क्षपक। जघन्य का एक एक समय उत्कृष्ट भी और जघन्य भी, तथा अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त तक सम्यक्व में रहा, मिनिमम उसको सम्यक्व में रहने का मिनिमम काल, या अजघन्य का इसे भी चार घाती कर्म के लिए हम श्रेणी में भी ले सकते हैं, दो दो श्रेणी के बीच में, या यहाँ सम्यक्व में रहने का मिनिमम काल भी ले सकते हैं। और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर है, साधिक इसलिए उपशम का भी ले लो, वेदक का भी ले लो और क्षायिक का भी ले लो, साधिक 66 हो जाते हैं।
कि अवधि ज्ञान का काल भी साधिक 66 सागर तक हो सकता है?
हो सकता है, लिया ना सबको एक साथ, अवधि ज्ञान रहा उसका अवधि ज्ञान चालू रहा, सम्यक्व है तो अवधि ज्ञान चालू रहा। वेदिनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का काल ओह के समान है,
एक से चार समय,
यानी जघन्य के लिए एक से चार समय, और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि दो जघन्य के बीच में, और उत्कृष्ट काल ज्ञानावरण के समान है, यानी साधिक 66 सागर, साधिक 66 सागर। अब मन परे ज्ञानी जीवों में, ये अभिनिबोधि की बात हो गई, मन परे ज्ञानी जीवों में, मन परे ज्ञान का काल कितना है?
कुछ कम कोटि,
हाँ अधिक से अधिक कुछ कम पूर्व कोटि, हाँ चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय है, चार घाती का तो क्षपक में होगा और गोत्र कर्म का जघन्य संकलेश में होता है, तो असंयम के अभिमुख वाला चौथे गुणस्थान के सन्मुख वाला वो एक समय लेना। इसी प्रकार अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय,
ये तो श्रेणी से उतरते समय, हाँ,
श्रेणी से उतरते समय उपशम श्रेणी से उतर, क्योंकि मन परिज्ञान देव में उत्पन्न हुआ तो नष्ट हो गया, यानी उपशम श्रेणी उतरते समय एक समय के लिए जो बंध किया वो अजगन नहीं था और मरकर देह हुआ तो एक समय हुआ। उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण है, मैंने उत्पन्न होने से लेकर मरण तक। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का काल ओग के समान है, एक समय से चार समय, वो तो कहीं पर होते ना मध्यम परिणाम में जघन्य होता है। अजघन्य अनुभाग बंध का काल ज्ञानावरण के समान है, दो जघन्य के बीच अजघन्य भी हो सकता है, तो एक समय से लेकर
कुछ कम कोटि,
कुछ कम एक पूर्व कोटि। इसी प्रकार संयत सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवों के जानना चाहिए, हाँ उसका स्वामी जुदा है, जो गोत्र का उत्कृष्ट करने वाला जो है वो यहाँ तो मिथ्यात्व के सम्मुख वाला लेना, छठे से मिथ्यात्व में जाने वाला जो विशेषार्थ। अभिनिबोधि ज्ञानी आदि तीन ज्ञान वाले जीवों में, अभी सबका विशेषार्थ एक साथ बताए, चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में होता है, उपशम श्रेणी पर आरोहण कर और उतर कर क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने में कम से कम अंतर्मूर्त काल लगता है, ये इसको यहाँ लिया क्षपक उपशम उतरा और क्षपक चढ़ा, तथा गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध उत्कृष्ट संकलेश वाले मिथ्यात्व के अभिमुख जीव के होते हैं। अभिनिबोधित ज्ञानी में इन जीवों के गोत्र कर्म का एक बार जघन्य अनुभाग बंध होने पर मार्गणा ही बदलेगी ना। उन्होंने क्या लिखा था, पुनः उसके जघन्य अनुभाग बंध के होने योग्य अवस्था अंतर्मुख काल के पहले नहीं हो सकती। हमने उसको पूरा काट दिया था। देखो देखो पुनः के बाद जो वाक्य है ना, देखो उसका अभी इसके बाद छोड़ दो। उन्होंने क्या लिखा है, कोई जो मिथ्यात्व में जाता है तो दोबारा समय तो प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में जा सकता है, परंतु ये हमारी मार्गणा के लिए लागू होगा क्या? अभिनिबोधिक ज्ञान ही रहते हुए मिथ्यात्व में गया तो अभी अभिनिबोधिक ज्ञान छूट गया, वो मार्गणा ही छूट गई। इसलिए उन्होंने जो लिखा है वो गलत है, इसलिए पुनः के बाद वाला पूरा वाक्य निकाल देना। क्या क्या निकालना है, उसके जघन्य अनुभाग बंध के योग्य यह अवस्था अंतर्मुख काल के पहले नहीं हो सकती, ये पूरा वाक्य निकालो, पुनः पुनः रखो। और उसका क्यों निकाला, इसके लिए हमने नीचे लिख के दिया था कि पुनः अजघन्य नहीं होगा, यानी जघन्य के बाद अजघन्य नहीं होगा क्योंकि मार्गणा बदलेगी। इसलिए उपशम श्रेणी उत्तर कर पुनः क्षपक श्रेणी पर आरोहण करते हुए अंतर्मूर्त तक अजघन्य बंध होगा। या दूसरी ओर से बताना है तो सम्यक तो में रहा अंतर्मूर्त तक, उसने जघन्य किया ही नहीं तो फिर उसका अजघन्य का एक अंतर्मूर्त बन जाता है, सम्यक तो में रहने का अंतर्मूर्त काल, पर यह श्रेणी का अंतर छोटा होगा इसलिए उसको लिया था। अतः इनमें इन पांच कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा है। आपने वो वाक्य निकाल दिया, कुछ नहीं करना, ऐड इसलिए हमने किया कि समझने के, हमने क्यों हमने क्यों उसको निकाला, क्योंकि मार्गणा बदल जाएगी तो अंतर्मूर्त कैसे घटित करना है, दो श्रेणी के बीच में भी हो सकता है, या सम्यक्त्व में रहने का काल ही अंतर्मूर्त होता है, तो वो अंतर्मूर्त का अजघन्य किया, इसलिए अजघन्य काल अंतर्मूर्त का। यहाँ तक समझ में? तथा वेदनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध, अभी इसमें भी जो पर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान लिखा है वो निकाल दो। क्योंकि पर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान ये तो आयु के लिए लगाते, वेदनी नाम के लिए केवल मध्यम परिणाम वाला है, तो वेदनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध मध्यम परिणाम वाले किसी भी जीव के हो सकता है। ऐसे जीव के एक बार जघन्य अनुभाग बंध होकर और बीच में अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर देकर पुनः जघन्य अनुभाग बंध संभव है, इसलिए इनमें वेदनी और नाम कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय कहा है, शेष कथन सुगम। ये समझ में ना, ऊपर जो उन्होंने अभिनिबोधि ज्ञानी की बात है उसके लिए सारा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पर। चार घाती और गोत्र का अजघन्य काल अंतर्मूर्त देखा, और वेदनीय नाम के लिए जघन्य काल एक समय लिया, ये डिफरेंस है। उत्कृष्ट काल सबके लिए समान है, और जघन्य का उत्कृष्ट काल साधिक 66 साल। अब परिहार विशुद्धि संयत जीवों में
हाँ
तेज तेज हमने देखे ना मूल मध्यम परिणाम केवल इसके लिए लिखते हैं, बाकी पर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान आयु कर्म के लिए लिखते हैं। अब नीचे का पैराग्राफ, परिहार विशुद्धि संयत जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। शपक करने में शायद दर्शन की क्षमता,
परिहार विशुद्धि की बात है ना,
तो क्या हुआ
वो तो छठा साथ में गलत
है। तो शायद समय को नहीं प्राप्त कर सकते,
नहीं साहित्य वही मैं पूछ रहा हूँ, सब
विषय योजना क्यों कह रहे
हो सपना की तो इतने गलत हो गई। दर्शनमुखी
छपना वाले के चार घाती करने यानी उसके विशुद्धि कब होगी छपना के काल में, तो एक समय लिया। और गोत्र कर्म का कब होगा, जब वो सामयिक के सम्मुख छठे गुण स्थान वर्ती है, जब संक्रेय ज्यादा है, इसलिए वहां भी एक समय लिया। उसमें चार घाती तो अप्रशस्त है और गोत्र कर्म तो प्रशस्त है, इसलिए उल्टा पुल्टा लेना। चार घाती के लिए तो सर्व विशुद्ध लेना और गोत्र के लिए तो संकलेश वाला लेना।
तो परिवार विशुद्धि वाला छठे गुणस्थान के सन्मुख हो सकता है, हमने देखा था कि एक बार परिवार विशुद्धि प्राप्त हो जाती है तो मरण में वो छोटे के सन्मुख हो जाएगा ना,
ना। परिहार विशुद्धि से वो सामयिक से परसों तो पढ़ा था स्वामी तो पढ़ा था ना,
नहीं मैं इसे समझ रहा था कि एक बार परिवार विशुद्धि प्राप्त हो जाती है तो
छूट सकती है ना, उसकी विशुद्धि गई संकलेश हो गए छूट गई उसकी, छठे के सन्मुख हुआ। यहाँ बात आई थी प्रमत के सन्मुख वाला परिहार विशुद्धि वाला, यानी छठे में से छठे ही रहा परंतु उसके
सामयिक
छेद को स्थापना हो गया। हमने स्वामित्व में देखा था क्योंकि गोत्र का जघन्य उसी के होगा, अजघन्य अनुभाग बंद का जघन्य काल अंतर्मूर्त, अजघन्य का अंतर्मूर्त उसी को कहेंगे क्योंकि परिहार विशुद्धि अंतर्मूर्त तक तो रहेगी ही रहेगी, ये उसका अर्थ है। और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण, वेदनी और नाम कर्म का भंग मन परे ज्ञानी जीवों के समान है, यानी एक से चार समय कहीं पर भी घटित होता है। और वैसे भी उसका परिहार विशुद्धि का जो उत्कृष्ट काल है कुछ कम पूर्व कोटि, वो भी अजगण्य के लिए घटित होगा। इसी प्रकार संयता संयत जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ही बोल है ना, कुछ कम पूर्व कोटि की बात इसमें भी घटित होगी। उसमें चार घाती कर्म का पांचवे से सातवे में जाने वाला एक समय होगा जगन्य का, गोत्र का जगन्य पांचवे से मिथ्यात्व के सम्मुख वाला होगा, पर कथन यही होगा कि एक समय है। वह जगन्य का जगन्य काल अंतर्मूर्त होगा क्योंकि पांचवे में रहने का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, और जगन्य का उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है वो बराबर है, इस तरह से हमको सोचना है। सूक्ष्म सांप्रायिक करना तो हुआ है, सूक्ष्म सांप्रायिक जीवों में छह कर्मों का भंग अपगत वेदी जीवों के समान है। इन्हें क्या समझना है, उसमें सूक्ष्म सांप्राय दसवें वाला है तो चार घाती का तो अंतिम समय में क्षपक के होता है, तीन ही घाती करना है, यहाँ मोहनीय तो लेना नहीं है, छह कर्मों में तीन घाती तीन अघाती है
और
तो उनका तो अंतिम में। और वेदिनी नाम गोत्र कैसा है, नवे के सन्मुख वाला उपशम श्रेणी उतरने वाला, वो एक समय के लिए जघन्य होगा। और सूक्ष्म सांप्राय का अजगण्य काल कितना होगा, एक समय उपशम श्रेणी में सूक्ष्म सांप्राय में आया और मर गया, वहां तो अजगण्य ही होता है, ख्याल में है ना बस। और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त अब आते हैं 42 नंबर के पेज पर, कृष्ण लेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। अब इसमें कृष्ण रेशा वाला नारकी सर्व विशुद्ध सम्य दृष्टि लेना है चौथे गुणस्थान वाला, तो इसलिए एक या दो समय हो जाएगा। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, दो जघन्य के बीच में उसका अजघन्य हो सकता है, यानी एक समय के अंतर से जघन्य हो सकता है उसका, इसलिए अजघन्य का जघन्य काल एक समय है। और उत्कृष्ट काल साधिक 33 अगर लिया, क्योंकि वो अजघन्य ही कर रहा था वो, तो कृष्ण रेशा जाने के पहले उसकी कृष्ण रेशा अंतर्मुख पहले शुरू हुई थी, और आने पर भी कृष्ण रेशा में ही जन्म लेता है वो, सातवें नरक से निकलेगा, पंचेंद्रिय तीर्यंश होगा, तो वहाँ पर भी कृष्ण रेशा रहेगी, तो दो अंतर्मुहूर्त बढ़ जाते उसमें, इसलिए साधिक 33 सागर कहा। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है। ओघ के समान कहने से वेदनीय और नाम का तो एक से चार समय है, वो मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि कोई भी उसका स्वामी हो सकता है। गोत्र कर्म का तो एक समय ही है, कृष्ण लेशा है, सातवें नरक का नारकी उसका जघन्य करेगा, सम्यक के सन्मुख वाला, इसलिए एक समय हो जाता है। ओघ के समान है, तीनों का समान नहीं है, वेदनीय और नाम का एक समय से चार समय और गोत्र का एक समय। अजघन्य अनुभाग बंध का काल ज्ञानावरण के समान है। इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है ना, परंतु बराबर है उनकी बात नीले नवरी गोद अजघन्य जघन्य अंतर्मुहूर्तम,
एक समय नहीं होगा, एक समय में लेसिया नहीं पलटेगी, तो अजघन्य का अंतर्मुहूर्त लेना ही पड़ेगा।
मेरा क्या कहना है, छठे नरक में लगाओ
अजघन्य अनुभव का एक समय तो कैसे होगा,
दो जघन्य के बीच,
हाँ छठे नरक में एक समय हो जाएगा
और मनुष्य में एक समय में लेशा पलट सकता
है। यहाँ पे तो जघन्य हम लोग को सातवें नरक में ही लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे दो बार एक जघन्य नहीं हो सकता,
जघन्य लिया ना वहाँ पर
नहीं, पर वहाँ पे
अजघन्य अन्यत्र ले सकते हैं, कृष्ण रेशा हमारी मार्गण है, सातवें नरक का मार्गण
छठे नरक में जो हो रहा है वो अजघन्य हो रहा है, वो जघन्य होता ही नहीं है, कृष्ण रेशा में जघन्य तो खाली सातवें नरक।
अच्छा वो कृष्ण रेशा छठे नरक के लिए वो जघन्य होगा, परंतु
सातवें नरक
सभी अपेक्षा से वो जघन्य होगा, और मनुष्य तीर्यंचों में उसका अर्थ एक समय में लेशा नहीं पलटेगी,
नहीं पलटेगी,
यानी जैसे कषाय पलट सकता है, योग पलट सकता है, लेशा नहीं पलटेगी, नहीं तो एक समय लिखते ना। क्योंकि मनुष्य तीर्यंचों की तो लेशा तो एक अंतर्मुहूर्त ही रहेगी, कृष्ण लेशा वहाँ अंतर अजघन्य ही होगा, तो अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त। मनुष्य तीरंजों में लेशा परिवर्तन होने, हाँ नील और कापोत लेशा वाले जीव में सात कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का काल पहली पृथ्वी के समान है। मैंने चार घाती का तो समय दृष्टि है, सर्व विशुद्ध एक से दो समय तक होगा। वेदनीय नाम गोत्र तीनों को एक साथ लेना,
एक से चार समय,
वो एक से चार समय हो जाएगी, और सबका अजघन्य एक समय होगा, और उत्कृष्ट काल जो है वो अपनी अपनी लेशा का जो है ना,
लेशा का काल,
हाँ लेशा का काल, नील का काल
17 साल,
हाँ और कपोत का साधिक 7 साल, साधिक शब्द लगाना। अजघन्य अनुभाग बंध का काल अनुत्कृष्ट के समान है, इसका विशेषत पढ़ लेते इतना हो जाएगा। कृष्ण लेशा में चार घाती कर्मों का बंध समय दृष्टि सर्व विशुद्ध जीव के होता है। अब यहाँ पर भी नारकी को ही लेना है, कृष्ण लेशा तो समय दृष्टि मनुष्य के भी हो सकती है, उसमें ना नहीं है, परंतु अति विशुद्धि में उसके लेशा शुभ हो जाएगी। इसलिए इनमें जगन्य अनुभाग बंद का जगन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल दो समय है। मैंने करण परिणाम में नहीं, ये सर्व विशुद्धि में है रेगुलर। इस लेशा में गोत्र का जगन्य अनुभाग बंद सातवीं पृथ्वी के नारकी के सम्यक्त के अभिमुख होने पर
अंतिम समय में
होता है। उत्कृष्ट अनुभाग बंद में नहीं, यहाँ तो जगन्य अनुभाग बंद है, अंतिम समय होता है सम्यक्त के अभिमुख होने पर, अंतिम समय होता है उत्कृष्ट अनुभाग के, इतना निकाल देना। यह जीव उसके बाद नरक में अंतर्मुक्त काल तक अवश्य रहता है, यानी वो सम्यक्त हुआ फिर मिथ्यात्व में गया फिर मर गया। नारकी की अपेक्षा तो ये बात घटित हो सकती है, परंतु यहाँ हमको इतने उठक बैठक करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य तिर्यंश में लेशा का काल अंतर्मुक्त है और वो अजगर नहीं कर रहा है, वहाँ हम ले सकते हैं। इसलिए इसके गोत्र कर्म के अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल अंतर्मुक्त कहा है, शेष कथन सुगम है। वो नारकियों में अगर कहना है तो वहाँ हमको सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में गया अंतर्मुक्त में मरा ऐसा ले सकते हैं, परंतु यहाँ केवल लेशा के प्रकरण में मनुष्य तिर्यंश में लेशा परिवर्तन होते अंतर्मुक्त में, तो उसका अंतर अंतर्मुक्त हम सोच सकते हैं। यही रुकेंगे अब। चावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हूँ।